नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। जिन्होंने भी अपने
हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। पिछले बुधवार हमने श्लोक क्रमांक 11 लिया था, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाषसे गतासून अगतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडित। श्री भगवान उवाच। भगवद्गीता जिसकी शुरुआत हुई अर्जुन के प्रश्नों से, और भगवद्गीता के मध्य में भी अर्जुन के प्रश्न, और भगवद्गीता के अंत में भी अर्जुन के प्रश्न। भगवद्गीता के प्रारंभ में अर्थात भगवान के बोलने के प्रारंभ में, उससे पहले अर्जुन के जो प्रश्न भ्रमित अवस्था में, तो भगवान गीता सुनाने से पहले अर्जुन के जो प्रश्न, वो अर्जुन भ्रमित अवस्था में जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो, और भगवान भगवद गीता सुनाना प्रारंभ किए, जैसे हम पिछला श्लोक ले चुके हैं और आज का श्लोक भी, तो भगवान गीता प्रारंभ करने के पश्चात अर्जुन प्रश्न फिर भी पूछते हैं, परंतु वो प्रश्न अब जिज्ञासा, अब वो भ्रमित प्रश्न नहीं है अर्जुन के। अब अर्जुन और जानना चाहते हैं कर्म योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में, अष्टांग योग के विषय में, भक्ति योग के विषय में, शरणागति के विषय में, तो वो सारे प्रश्न अर्जुन की जिज्ञासाएं। और अंत में अर्जुन ने प्रश्न पूछा 18वें अध्याय में, कौन सा? करिष्ये वचनम तव, कि अब मैं क्या करूं, आप जो बताओगे वही मैं करूंगा। तो वो जो अर्जुन का प्रश्न था वो पूर्ण शरणागति, ज्ञान से परिप्लुप्त अब अर्जुन वो प्रश्न पूछे। तो यहां पर आज का ये जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, ये कई श्लोकों में से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी चर्चा हम करेंगे। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमथ परम। भगवान आगे कह रहे हैं, न तु एव जातु न आसम। यदि संस्कृत को विभाजित कर उच्चारण किया जाए, न तु एव जातु न आसम, ऐसा कोई भी समय नहीं रहा था अर्जुन जब मैं नहीं उपस्थित था, तुम नहीं या ये जना अधिप, ये सारे राजा कुरुसेना जिनको तुम इतना देख देख कर परेशान हो रहे हो, ऐसा एक क्षण भी नहीं था जब ये तीन पार्टियां, कौन सी तीन पार्टियां, भगवान स्वयं, अर्जुन और अर्जुन जिनको देखकर विलाप कर रहे हैं वो, तो भगवान कह रहे हैं ये तीनों पार्टियां भूतकाल में भी थी, वर्तमान में तो हैं और भविष्य भविष्याम कि भविष्य में भी ये रहेंगी। तो यहां पर देखिए अर्जुन के प्रश्नों की पूरी श्रृंखला को यदि हम देखें प्रथम अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी, तो उसमें यह समझ में आ रहा है कि अर्जुन, उसका सारांश यह है कि अर्जुन इनको मारना नहीं चाहते, इन सबको अर्जुन मारना नहीं चाहते। तो यदि यह प्रश्न अर्जुन से पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं मारना चाहते, तो अर्जुन क्या उत्तर दिए, अरे भाई किसी को मार दोगे तो खत्म हो गया ना, वो उसका अस्तित्व नहीं रहा, वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व नहीं रहा, तो मैं कैसे अब उस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर सकता हूं जिसे मैंने ही मारा है, जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं। तो यहां पर भगवान देखिए अर्जुन की वो जो धारणा है कि मेरे मारने की वजह से इनका अस्तित्व खो जाएगा, यहां पर भगवान उनके सारे प्रश्नों का सारांश लेकर शुरुआत कर रहे हैं उत्तर देने का। अब पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम बहुत पांडित्य दिखा रहे हो, अपना पांडित्य तुम दिखा रहे हो, परंतु जो तुम्हारी जो वास्तविकता है वो मैं समझ पा रहा हूं केवल, और कोई नहीं समझ पाएगा, बाकी सब तुम्हें पंडित कहेंगे। तुम्हारे जो ये शब्द हैं उनका मूल रूप है तुम्हारी मूर्खता, भगवान कहते हैं। तो अब हम आज के श्लोक में देखेंगे कि भगवान पांच दिव्य शिक्षाएं दे रहे हैं आज के श्लोक को सुनाते हुए। सबसे पहले प्रथम शिक्षा, भगवान अब ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू किए हैं इस श्लोक के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान। तो ये जो 12वां श्लोक दूसरे अध्याय का आज जो हमने लिया, इसे भगवद गीता की बुनियाद ये कहा गया है कि यदि भगवद गीता की बुनियाद है तो ये 12वां श्लोक मूल तत्व। उदाहरण है जैसे इमारत, इमारत को आप देखो तो इमारत बाहर से दिखने में बहुत सुंदर दिख रही होगी, परंतु जो विशेषज्ञ हैं, जो आर्किटेक्ट हैं या जो सिविल इंजीनियर हैं, वो देखते हैं कि इसकी बुनियाद कितनी पक्की है। कोई वृक्ष को हम देखते हैं तो वृक्ष खड़ा है, बड़े बड़े विशाल वृक्ष आपने देखे होंगे, बरगद के वट वृक्ष, जो भी बड़े बड़े विशाल वृक्ष, उनकी जड़ें दिखाई नहीं देती, परंतु हम जानते हैं एक छोटा सा बालक यदि वृक्ष को देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि यह वृक्ष किसके आधार पर खड़ा है। कई बार बड़े बड़े विशाल वृक्षों को यदि मारना होता है तो वो लोग कैसे मारते हैं, जड़ों को काटकर, वो जड़ों को काटकर जड़ों को काट दिया या जड़ों में एसिड डाल दिया। जड़ों में एसिड डालने से इतना बड़ा विशाल वृक्ष वो धराशायी हो जाता है। तो यहां पर ये हम समझ रहे हैं कि ये जो आज का श्लोक है ये बुनियाद है, और इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यदि ये पूछा जाए कि आपने श्लोक का उच्चारण किया, श्लोक का अर्थ सुना, तो आपके अनुसार आप क्या समझे कि ये श्लोक पूरी भगवद गीता का बुनियाद कैसे बन सकता है? नींव, भगवद गीता की नींव इस श्लोक से भगवान ने क्यों और कैसे डाली है? आत्मा जो है वो शाश्वत है ये कहा गया। हाँ, अब तक इस श्लोक में आत्मा तो भगवान ने ये आत्मा शब्द तो इस्तेमाल किया ही नहीं है अब तक। तो अर्जुन को ये तो समझ में नहीं आएगा कि ये अचानक भगवान ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान को किस समय से जान रहे हैं? बस द्वापर युग में, जो द्वापर युग में भगवान अवतरित हुए, सखा बने अर्जुन के, बस उसी समय से। तो भगवान ने श्लोक में आत्मा का तो उल्लेख किया नहीं है, हालांकि इनडायरेक्टली कहा है। डायरेक्टली आत्मा का उल्लेख अब आगे श्लोकों में तो आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा है कितने सारे श्लोकों में, ठोक पीट के इतना बजा के भगवान कहेंगे अब कि कई बार हमें लग जाता, अरे बस हो गया, कितनी बार सुन लिया ये, शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा। ठीक है, यहां पर बुनियाद ये भगवद गीता की इस श्लोक से ऐसे समझ में आती है कि इस श्लोक में भगवान ने अपना अस्तित्व क्या है वो समझाया। सबसे पहले भगवान का अस्तित्व क्या है, क्योंकि अर्जुन जो हैं वो भगवान को अभी भगवान नहीं मान रहे। 11वें अध्याय तक अर्जुन भगवान को भगवान नहीं मान रहे, हां गुरु माने हैं अब तक, परंतु भगवान नहीं मान रहे अब तक। तो यहां पर भगवान ने इस श्लोक के द्वारा यह स्थापित कर दिया कि यदि भगवद गीता को हमें सही तरीके से समझना है तो उसकी बुनियाद क्या है, हु इज द स्पीकर ऑफ गीता, उनका अस्तित्व जानना, कि वो कोई साधारण जगत गुरु नहीं है। बस जगत गुरु बहुत से हो जाते हैं, वो अपना नाम भी रख लेते हैं, जगत गुरु ये, जगत गुरु वो। तो अर्जुन ने भगवान को गुरु माना है, अपने आप को उनका शिष्य माना है, तो भगवान केवल गुरु नहीं है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ये कैसे समझ में आएगा कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं? इस श्लोक से कैसे समझ में आता है कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं? ठीक है, उसकी उसकी चर्चा हम करेंगे, एक शिक्षा है वो कैसे समझ में आएगा। तो भगवद गीता श्रवण करने की बुनियाद सर्वप्रथम ये है कि स्पीकर भगवद गीता के वक्ता कौन है, जब तक उनके प्रति हमारा आदर सम्मान और उनका अस्तित्व हम नहीं समझेंगे तब तक हमें, जैसे कई बार आप देखो कोई आप किताब खरीदते हो, कोई कोई क्लासिक है, तो ऑथर देखते हो ना उसका, कि उसका ऑथर कौन है। हमें याद है हम स्कूल में हमारे हिंदी की पुस्तकें होती थी या इंग्लिश की पुस्तकें होती थी, उनके ऑथर प्रेमचंद विख्यात है, कि बस वो ऑथर का नाम जो भी उसकी पुस्तक होगी अच्छी होगी। आजकल दूसरे उदाहरण लोगों को समझ में आते हैं, फिल्मों के उदाहरण, डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर से समझ में आता है कि हाँ बहुत फिल्म बहुत जोरदार होगी, शायद स्टीवन स्पीलबर्ग, आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे, पता नहीं कौन है। तो यहां पर सर्वप्रथम भगवान जो इसके ऑथर हैं गीता के, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। भगवान अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं कौन हूं अर्जुन, जो तुम्हें अभी गीता सुनाने वाला हूं, तो पहले समझ लो कि मैं कौन। तो इसलिए ये पहली शिक्षा। इस श्लोक के द्वारा भगवान कैसे अपना अस्तित्व सिद्ध किए हैं, ये दूसरी शिक्षा। जीव और भगवान में अंतर कैसे समझे, इस श्लोक के द्वारा जीव एवं भगवान में अंतर। हाँ, भगवान ने यहां क्या कह दिया है कि मैं ये सब कुछ याद रखा हूं, भूतकाल में तुम कहां थे अर्जुन, तुमने क्या क्या किया, ये सारे योद्धाओं ने क्या क्या किया, और इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बाहर जितने सारे जीव हैं, जड़ चेतन सब कुछ, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ मैं जानता हूं। तो हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। हम में और भगवान में ये एक विशेष अंतर है कि हम केवल अपना सच्चिदानंद स्वरूप थोड़ा बहुत पहचान पाते हैं। प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि हम लोग मानो ये इस हॉल में, टेंपल हॉल में सभी बैठे हुए हैं, हमारी ज्ञान शक्ति कितनी है। यहां पर भगवान अपनी ज्ञान शक्ति बता रहे हैं। ज्ञान शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को जीव से भिन्न कैसे हैं ये समझा रहे हैं। अब हम लोग सब यहां पर बैठे हुए हैं, हमको कितना ज्ञान किसी के विषय में हो सकता है, दूसरे के विषय में पूछ रहे हैं। आपके बगल में कौन बैठा है, आप में से बहुतों को तो पता भी नहीं होगा, केवल दिखने में मनुष्य दिख रहा है, पता भी नहीं होगा कि वो मनुष्य का नाम क्या है, वो कौन सी भाषा बोलता है, कौन से परिवार से है, वो क्या उसकी आयु है, उसके मन में क्या चल रहा है, छोड़ दीजिए, वो सवाल तो पूछ ही नहीं सकते। उसे भूख लगी है, उसे नींद आ रही है, वो परेशान है, मन में क्या बोल रहा है, कुछ हमें समझ में नहीं आ सकता, कुछ उसका ज्ञान है। अरे आपके बगल में कौन बैठा है और वो क्या कुछ कर रहा है, छोड़ दीजिए, आपके खुद के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। अभी इस समय हमारे शरीर के अंदर कितने जीवाणु कीटाणु क्या कर रहे हैं हमारे शरीर के साथ, कुछ पता है, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है हमारे शरीर के अंदर, कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत भान होता है यहां वहां, जब कुछ अचानक कुछ दर्द शुरू होता है तो कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है, वो भी अंदाजा कुछ बताता है कि शायद ऐसा कुछ होगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि भगवान गीता में आगे भी एक श्लोक में कहे हैं, इसी प्रकार का एक श्लोक है, अर्थात उसका अर्थ थोड़ा इसी प्रकार का है, सातवें अध्याय में है, कौन जानता है। हाँ, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भूतानि च भविष्यानि माम तु वेद न कश्चन। कि हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं, भगवान कहते हैं कि जो वर्तमान में चल रहा है वो जानता हूं, जो भूत में हो वो जानता हूं, जो भविष्य में होने वाला है वो सब कुछ जानता हूं। इसलिए एक भक्त वो भगवान से प्रार्थना ये कर रहे हैं, हालांकि उनका भाव प्रेम का भाव है तो उसे गलत मत समझना, वो भगवान से कहते हैं कि भगवान आपसे ज्यादा हम जो आपके भक्त हैं ना वो आनंद लूटते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से आप आनंद लूट नहीं सकते हमारी तरह। यू कैनॉट एंजॉय द वे वी डिवोटीज ऑफ यू कैन एंजॉय बिकॉज ऑफ यू हैविंग अ सर्टन क्वालिटी इन यू, What is that quality? You are all cognizant. All cognizant का अर्थ है सर्वज्ञ. आप सब कुछ जानते. सब कुछ जानने के बाद फिर एक्साइटमेंट क्या रह गया आपके जीवन का? और इसलिए वो वक्त बोलते हैं कि हमारे जीवन का एक्साइटमेंट ये है कि हमें पता नहीं अगले क्षण आप क्या करोगे हमारे साथ, या मेरे कर्म क्या करेंगे मेरे साथ, है ना? तो एक्साइटमेंट बना रहता है. जैसे भौतिक संसार में एक्साइटमेंट ये बना रहता है कि हर समय वो गाजर का उदाहरण है ना, वो गाजर हर समय लटकी हुई दिखती है और ये एक्साइटमेंट रहता है, ये उत्सुकता रहती है कि बस दो कदम और वो गाजर मेरी. और यदि हमारे सामने कोई और भी वो गाजर खा ले, परंतु फिर भी ये आशा बनी रहती है कि कहीं ना कहीं से दूसरी गाजर आएगी सामने लटकती हुई. और आध्यात्मिक संसार में एक्साइटमेंट क्या है कि हर क्षण वो गाजर लटकती हुई उनको भी दिखती है, परंतु वो क्यों भागते हैं गाजर के पीछे? भगवान को अर्पित करने के लिए. अंतर यही है दोनों में. आध्यात्मिक संसार में, भौतिक संसार में, वो दोनों में एक्साइटमेंट है. यहां पर है केवल इंद्रिय भोग, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों का भोग के लिए. तो यहां से भगवान ये श्लोक इस प्रकार से इसलिए कहे हैं कि अर्जुन के अंदर भगवान श्रद्धा उनके प्रति जागृत करना चाहते हैं. श्रद्धा, विश्वास. अब देखिए, आपको किसी के प्रति श्रद्धा और विश्वास क्यों कब जागृत होगी? जब आप उसके अंदर देखोगे कि हां, ये व्यक्ति सक्षम है मुझे कुछ प्रदान करने के लिए, मेरी सुरक्षा करने के लिए. एक छोटा सा बालक वो अपने माता पिता पर इतना दृढ़ विश्वास क्यों रखता है? क्योंकि वो देखता है कि हां, किसी भी समस्या में ये मेरे माता पिता मेरी रक्षा करते किए हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी. तो यहां पर भगवान अर्जुन को जब ये कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं अर्जुन, मैं तुम्हें केवल अब से नहीं जानता, मैं तुम्हें नित्य काल से जानता हूं. और इसके साथ साथ भगवान ये भी कहते हैं माम तु वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको और उनका सब कुछ लेखा जोखा मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता. तब देखिए, ये जो भगवान ने कहा है कि भगवान को कोई नहीं जान पा रहा और भगवान सबको जानते हैं उनके पूर्व काल से, वर्तमान और भविष्य से, तो दो भावनाएं जागृत होती है. एक है डर की भावना. जैसे हम किसी भी के इस भौतिक संसार में किसी भी भौतिक जीव के साथ व्यवहार इतना खुलकर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डर नहीं, वो व्यक्ति मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो डर नहीं. मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक ठीक जाने आपके बारे में, आपने क्या गड़बड़ किया कहीं पर, सब जानता है वो, तो आप तुरंत थोड़ा भयभीत हो जाओगे, ये व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, इसने मुझे देख लिया था चोरी करते हुए, जो भी कुछ करते हुए, तो वो व्यक्ति मेरे बारे में कुछ जानता है, इसके वजह से मेरे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है. अब गलत किया है तो भय उत्पन्न होता है, सही किया है तो विश्वास ना, कि ये व्यक्ति जानता है कि मैंने क्या सही किया है, तो ये व्यक्ति दूसरों को बता सकेगा कि हां, ये निर्दोष है, इसने कुछ इस प्रकार का पाप नहीं किया. तो भगवान जब ये कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं अर्जुन, मैं सब कुछ जान रहा हूं, तो अर्जुन का इसमें आदान प्रदान भगवान से कैसा रहा? अर्जुन और भगवान पर आनंदित होकर विश्वास किए, क्योंकि अर्जुन ने कभी पाप नहीं किया. अनघ और यही श्लोक भगवान यदि दुर्योधन को कहते तो तुरंत, खैर दुर्योधन तो इतना बेशरम था कि सभी जानते थे उस क्या उसके करतूते क्या। तो यहां पर हम जब ये श्लोक सुनते हैं, भगवद गीता का ये श्लोक हम जब सुनते हैं, तो हमारे मन में कौन सी भावना आती है? डर की भावना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हमने किया। डर की भावना यदि आ जाए तो कुछ तो गड़बड़। जैसे भगवान श्री कृष्ण तो छोड़ दीजिए, भगवान के जब ऐसे प्रतिनिधि, शुद्ध प्रतिनिधि आते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के सामने बहुत से लोग आने से डरते थे क्योंकि उन्हें कुछ तो आभास होता था कि ये व्यक्ति मेरे आर पार देख पा रहा है, ये व्यक्ति जान रहा है कि मैं क्या गड़बड़ करके आया हूं। तो वो डरते थे श्रील प्रभुपाद के सामने आने से भी। तो भगवान में हमारा दृढ़ विश्वास हो, इसलिए सबसे पहले हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए ये जानते हुए कि भगवान देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, एक गुरुकुल में गुरुजी सारे शिष्यों को एक एक केला देते और सबको कहते हैं कि ऐसी जगह पर जाकर खाओ जहां पर तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। तो कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, कोई झाड़ियों में छिपकर खाता है, कोई नदी के अंदर डुबकी मार के, तो अलग अलग तरीके से वो अपना अपना केला खाकर आ जाते हैं। एक लड़का, एक शिष्य ऐसे ही केला लेकर आता, गुरुजी पूछते हैं क्या हुआ, तुमने, तुमको कोई जगह नहीं मिली जहां पर तुम्हें कोई नहीं देख रहा था? तो शिष्य कहता है, गुरुजी आपने ही कहा कि भगवान परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में सब कुछ देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं उनसे छिप पाऊंगा? ऐसी कोई भी जगह नहीं। इंग्लिश की एक कहावत है जिसमें कहा गया है, ऑन अ ब्लैक स्टोन देयर इज अ ब्लैक एंट, ऑन अ डार्क नाइट इन अ विलेज फुल ऑफ ब्लाइंड्स। इसका सुपरलेटिव जो प्रोग्रेशन है वो देखिए, ऑन अ डार्क स्टोन मतलब ब्लैक रॉक, देयर इज अ ब्लैक एंट, ऑन अ डार्क नाइट अमावस्या के दिन, इन अ विलेज फुल ऑफ ब्लाइंड्स, हु कैन सी? गॉड, ओनली ही कैन सी, नॉट बिकॉज ही कैन सी, बिकॉज ही नोज इट इज देयर। तो जीव एवं भगवान में बहुत से अंतर हैं, परंतु इस श्लोक को लेकर हम ये अंतर इस पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान की स्मरण शक्ति। हमारी भी स्मरण शक्ति है, हमें भी वो शक्ति दी है कि हम स्मरण रख सकते हैं कि हमने 10 साल पहले क्या किया, हमने 15 साल पहले क्या किया। हमारे अंदर भी है स्मरण शक्ति, हम सब के अंदर स्मरण शक्ति है। इतनी स्मरण शक्ति है कि हम जो चलना सीखे, कब सीखे? जब हम 11 महीने के थे या 1 साल के थे तब हम चलना सीखे। अब तक याद है ना सबको? अब तक हमें याद है कि हम कैसे चलते हैं, हम खाना सीखे, हम क्या कुछ नहीं सीखे, सारी भाषा बोलना सीखे, और ये सब कुछ याद है हमें। ये सब कुछ याद क्यों है? इसके पीछे भी भगवान कारण है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मेरे वजह से स्मृति, अंदर जो परमात्मा हमारे हृदय में विराजित हैं, वो पावर हाउस है। वो जब कहते हैं हां इसको ये स्मरण आना चाहिए उसके कर्मों के अनुसार, तो उसको वो स्मरण आता है। तो देखिए उसकी हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा स्वरूप में वो कैसे विद्यमान है और क्या कुछ हमें वो नहीं दे रहे। तो स्मरण शक्ति, भगवान की स्मरण शक्ति ऐसी है, इतनी तीव्र है, यदि भगवान भी हमारी तरह भुलक्कड़ होते तो जितनी हमने सेवा भगवान के प्रति की है वो हमें भय होता है कि अरे याद ही नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा ऐसी सेवा करके। मानो आपने आज भगवान को भोग चढ़ाया, आपने भगवान का श्रृंगार किया, जो भी कुछ किया, 16 माला 64 माला जप किए भगवान के लिए, और कल भगवान भूल गए कौन था ये, क्या किया इसने, तो कुछ उत्साह रहेगा आपका भगवान के लिए कुछ करने के लिए कि कल भगवान भूलने वाले हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कलयुग में इसका गुणगान होता है, लेकिन कलयुग में ये दुर्गुण बताया गया कि ये दुर्गुण है कलयुग का, प्रायण अल्प आयुष सभ्य मंद स्मृति। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे जिसमें भगवान ने अपनी स्मरण शक्ति का प्रदर्शन किया। द्रौपदी चीरहरण, भगवान की स्मरण शक्ति का प्रदर्शन भगवान ने कैसे किया। एक दफा ये द्यूत क्रीड़ा के पहले की बात है, जब भगवान एक सेब छील रहे थे, एप्पल, सफरचंद, तो छीलते हुए भगवान वो चाकू लग गया और भगवान की उंगली थोड़ी सी कटी और वहां से खून आना शुरू। तुरंत द्रौपदी वहां पर थी, द्रौपदी ने अपने जो भी वो साड़ी पहनी थी वो आंचल से टुकड़ा फाड़ा और पट्टी बांधी वहां पे। भगवान ने उसी क्षण द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी को भी कृष्णा बुलाया करते थे भगवान, उनका एक नाम कृष्णा द्रौपदी का, तो भगवान ने कहा कि ये जो तुमने सेवा की है द्रौपदी, इसके बदले मैं अनगिनत रूप से इसे तुम्हें रिटर्न में दूंगा, इसके बदले में। उस समय तो द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई अनगिनत रूप से इसमें, और भगवान उसे याद रखे कि द्रौपदी, क्योंकि भगवान जानते थे भविष्य में क्या होने वाला, यहां से जैसे बताया गया है, तो उसे उस क्षण के लिए भगवान ने रिजर्व करके रखा कि मैं, भगवान को कुछ बहाना चाहिए था द्रौपदी को बचाने के लिए, तो भगवान ने यह बहाना ले लिया। तो इससे ये इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आता है कि यदि हम भी न जानते हुए भगवान की कुछ ऐसी सेवा करते हैं, हम भूल जाएं हमने क्या सेवा की। द्रौपदी भूल चुकी थी, ऐसा नहीं कि द्रौपदी उस समय जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी भगवान को पुकारते हुए भगवान को याद दिला रहे, आपको याद है मैंने इतना सा कपड़ा बांधा था, द्रौपदी भूल चुकी थी। इसलिए तो यदि उसे याद होता कि भगवान मुझे ये आश्वासन दिए थे इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस क्षण के लिए, तो द्रौपदी कभी अपने पतियों के पास नहीं जाती, भीष्म पितामह के पास नहीं जाती सुरक्षा मांगने हेतु। और जब भगवान से भी सुरक्षा मांगी द्रौपदी ने, तो द्रौपदी केवल भगवान को पुकारी, ये नहीं कहा उस केवल हे गोविंद हे गोपाल का, उसके बाद में ये नहीं कहा कि साड़ी नहीं, निस्वार्थ भाव से। तो द्रौपदी वो भूल चुकी, परंतु भगवान नहीं भूले, तो भगवान की स्मरण शक्ति इसमें दिखाई देती है। सुदामा उद्धार में श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान सुदामा जब पहुंचे द्वारका, तो भगवान ने सुदामा जो वर्तमान में थे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब भगवान जानते हैं कि बंगला तो वहां बना दिया मैंने पहले, फ्यूचर जानते हैं ना, तो इसलिए ये भक्त जो बोले ना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक्साइटमेंट खाली भक्ति ले सकते, क्योंकि भगवान तो जानते हैं बना दिया बंगला, परंतु सुदामा उनके अंदर जो एक्साइटमेंट, उनको जब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बंगला देखा इतना बड़ा विशाल आलिशान, तो भगवान सुदामा के साथ कौन सा वार्तालाप कर रहे थे? बचपन के दिन कि सांदीपनी मुनि के आश्रम में हम दोनों किस प्रकार से सेवा किया करते थे, कैसे हम, एक बारिश का दिन था, हम लकड़ी लेने के लिए गए थे वन में और वहां पर हम फंस गए थे, और फिर तुमने चने खा लिए थे सारे, सुदामा याद है तुम दूसरे पेड़ में थे, मैं अलग पेड़ में था, और भूख लगी थी दोनों को, तुमने अकेले चने खा लिए थे, याद है सुदामा? अब उस समय सुदामा वो इतना, उनको तो ये ध्यान भी नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण को ये समझ में आ गया था, उस समय भगवान ने कुछ नहीं कहा था, ऐसा नहीं कि जब वो बारिश बंद हुई वो उतरे और फिर जा रहे थे तो भगवान सुदामा से कहने लगे क्यों अकेले अकेले खाए, उस समय कुछ नहीं कहा, अब भगवान याद दिला रहे हैं, तो सुदामा वो समझ गए कि ऐसा कुछ मैंने किया था, और भगवान ने फिर ये बहाना लिया कि क्योंकि तुमने मुझसे बिना मुझे दिए तुमने वो चने खा लिए, अब जो तुम लाए मैं छीन के खाऊंगा, जो तुम्हारी पोटली में है उसे मैं छीन के खाऊंगा, तो सुदामा का उद्धार भगवान ने अपनी स्मरण शक्ति को सामने दिखाते हुए किया। दामोदर लीला, दामोदर लीला में क्या समझते हैं आप? हाँ, नल कुंवर और मणिग्रीव, हाँ नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान ने ध्यान रखते हुए कि नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था, और वो भी बहुत युगों पहले, बहुत युगों पहले। ये भी एक है दामोदर लीला का प्रसंग। इसके साथ साथ दामोदर लीला में भगवान ने बंदरों को माखन खिलाया, क्यों? माता यशोदा को चिढ़ाने के लिए नहीं, इतना भगवान ने याद रखा कि पिछले युग में, त्रेता युग में इन वानरों ने इतनी सेवा मेरी की और मैं इनको ठीक से कुछ भोजन भी नहीं खिला सका, मैं खुद एक वनचारी था तो इन वानरों को मैं क्या खिला, तो मैंने इनको प्रॉमिस, आश्वासन दिया था कि अगले युग में तुम्हें मैं फिस्ट पे फिस्ट खिलाऊं। तो फिर भगवान वो याद रखे, याद रखते हुए सोचे, बंदरों के विषय में भगवान याद रख रहे हैं, सोचो कि हम केवल किसके विषय में ज्यादा याद रखते हैं, कि जो बहुत थोड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे जीवन में कौन कौन आए गए उनके विषय में हम याद रखते हैं, क्या हम याद रखते हैं कि कौन से छोटे पशु ने हमारे लिए क्या कुछ किया हो, उसके विषय में केवल भगवान जिनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है केवल वही याद रख सकते हैं। एक पुस्तक निकली थी बहुत वर्षों पहले और इस पुस्तक के ऊपर एक सिनेमा बना था, बहुत रोमांचक था वो, जिसके अंदर एक व्यक्ति को भगवान बनने की इच्छा होती है, इस व्यक्ति को भगवान बनने की इच्छा होती है, बहुत परेशान हो जाता है अपने जीवन से, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मनुष्य नहीं रहना, मुझे आप जैसा बनना है। हालांकि काल्पनिक है परंतु इसमें जो मुद्दा है वो हम समझना चाहेंगे। तो भगवान इसके सामने आते हैं और भगवान इसे कहते हैं तुम मेरा पोजीशन लेना चाहते हो? हां, तुम हैंडल कर पाओगे? हां, और क्या, उसमें क्या होगा? तो भगवान उसे 7 दिन के लिए अपना पोस्ट दे देते, तो ये 7 दिन के लिए भगवान बन जाता है। तो 7 दिन के लिए भगवान बनता है तो इसको समझ में आता है, क्योंकि दूसरे दिन ही कहीं पर सुनामी और बहुत से लाखों लोग मर जाते, तो उसमें से और करोड़ों अरबों वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो अब ये सब रात को इसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये सब प्रार्थना सुननी है ना अभी। अब भगवान बना है तो भगवान का काम क्या है? तो इतनी सारी प्रार्थनाएं तो दिखाएं कि ये ना कंप्यूटर लेता है अपना और कंप्यूटर में फीड करता है, तो उसका कंप्यूटर पूरा ब्लास्ट हो गया, इतनी सारी प्रार्थनाएं। और केवल प्रार्थनाएं सुननी नहीं, रिप्लाई भी करना है। तो ये परेशान होकर भगवान के पास जाता है कि ये लो आपका पोस्ट, ये आप ही संभाल सकते हैं। अब ये देखिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर, कि भगवान हमें भुला भी देते हैं, जो आवश्यक नहीं है उसे भुला देते हैं भगवान, और जो आवश्यक है उसे याद दिलाते हैं। जैसे भगवान उस श्लोक में कहते हैं, स्मृति ज्ञान अपोहनम च। स्मृति का अर्थ है मेमोरी, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, और अपोहनम च, अपोहनम च का अर्थ है फॉरगेटफुलनेस। कल्पना कीजिए कि यदि हम ये भगवान से वरदान मांगे कि मुझे सब कुछ याद रखना है, जो जो मैं अलग अलग योनियों में क्या क्या था, मैं अलग अलग योनियों में क्या क्या था, मुझे सब कुछ उसकी याददाश्त मुझे मेरी होनी चाहिए। बहुत भयावह है, हम इतनी शांति से जी पा रहे हैं क्योंकि हमें याद नहीं कि हम क्या थे पिछले जन्म में। यदि कोई सामने स्क्रीन पे दिखा दे कि शिक्षाष्टकम दास पिछले जन्म में धारावी की नाली का एक सुअर था, तो कैसा लगेगा मुझे कि वो याद करते हुए मैं अभी जो कुछ मुझे मिल रहा है वो भी कुछ, वो सारा कुछ जाता रहेगा भोग मेरे सामने से। ये भगवान की कृपा है कि भगवान भुलाते हैं, परंतु भगवान भूलते नहीं, वो भूलते नहीं, हमें भुलाते हैं और हमें याद दिलाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है याद रखना। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एक मॉर्निंग वॉक पर श्रील प्रभुपाद ने देखा कि एक खेकड़ा वो समुद्र के तट पर पैदा हुआ, छोटा सा खेकड़ा पैदा होते ही वो अपना भोजन ढूंढना शुरू किया, पैदा होते ही भोजन ढूंढना शुरू किया। तो प्रभुपाद कहे कि ये भोजन ढूंढना इसलिए शुरू कर पा रहा है, इसे पता लग रहा है कि क्या खाने लायक वस्तु है क्या नहीं खाने लायक, और वो भी उसकी योनि के लिए। उसे क्यों? क्योंकि उसे परमात्मा याद दिला रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उसे पता था कि यहां से खाया जाता है, तो उसे परमात्मा याद दिला रहे हैं। हालांकि उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे परमात्मा की, परंतु यहां पर भगवान की स्मरण शक्ति इस लीला के द्वारा भगवान ने दिखाई। चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने हरेक भक्त के विषय में बताया कि इस भक्त ने इतने वर्षों पहले या कितने जन्मों पहले क्या सेवा मेरी की थी, और इन सब भक्तों को भगवान ने कृपा दी। ये खुद भूल चुके थे, भगवान ने याद दिलाया कि पता है तुमने उस समय मेरी इस प्रकार से सेवा की थी, इसलिए मैं आज तुम्हें ये वरदान देना चाहूंगा। तो इस महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने स्मरण शक्ति का प्रदर्शन किया, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में सप्तताल वृक्षों का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया दक्षिण भारत में। ये सप्तताल वृक्ष प्रभु श्री राम के युग के थे, जब प्रभु श्री राम वो सुग्रीव उनके उनसे मिले और सुग्रीव के साथ फिर वानर सेना लेकर उन्होंने लंका पर धावा बोला, तो सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए, सुग्रीव वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये राम वाली को मार पाएंगे, वाली को मार पाएंगे इस पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने ये सात ताल के वृक्ष दिखाए और रामचंद्र जी से कहा कि इनको यदि आप भेद सकते हो, इन सप्त ताल विशाल वृक्षों को भेद सकते हो, तब मैं विश्वास करूंगा कि आप वाली को मार पाओगे। तो प्रभु श्री राम अपने एक तीर से उन सात ताल के वृक्षों को भेदते हैं। तो ये सात ताल के वृक्ष ये भगवान की सेवा में लगे कि अपने शरीर में प्रभु श्री राम के का बांध लिया इन्होंने और वो खड़े तब से, और प्रभु श्री राम ने इन्हें वादा दिया था कि मैं अपने आगे वाले किसी युग में तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ये खड़े रहे कब से? त्रेता युग से, द्वापर युग और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जब गए तो उन्होंने याद रखा कि इन सात ताल वृक्षों ने मेरी सेवा की थी, तो मैं इनका उद्धार करना अभी अनिवार्य है। और तब चैतन्य महाप्रभु इनको आलिंगन करते हैं और सब भगवत धाम इन वृक्षों को भेजते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने स्मरण शक्ति से, कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिसमें भगवान अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा अपने भक्तों की सेवा को याद रखे हैं। तो हमें भगवान पर विश्वास आश्वासन उनका क्यों मान लेना चाहिए? क्योंकि भगवान एक भी सेवा जो हमने की, एक भी नाम यदि अनजाने में भी हमने ले लिया कहीं किसी योनि में करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले या करोड़ों करोड़ युगों पहले, भगवान उसको नोट डाउन कर लिए और वो न तो कोई इरेज कर सकता है, न वो कभी खत्म हो सकता है, न भगवान उसे कभी भूल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि छोटी सी छोटी भक्ति या छोटी सी मात्रा की भक्ति यदि हम भगवान को अर्पित करें तो भगवान कितना उसे याद रखते हैं। तीसरी शिक्षा, अब अर्जुन भगवान को चैत्य गुरु के रूप में तो नहीं मान रहे। चैत्य गुरु का अर्थ है जो चित्त के अंदर विराजित हैं, वो हैं परमात्मा। तो अर्जुन तो भगवान को अब ये नहीं मान रहे कि यही वो हैं जो मेरे हृदय में परमात्मा स्वरूप हैं। अर्जुन तो भगवान को, ठीक है भगवान एक सखा हैं, परंतु अर्जुन के सामने अभी वही हैं जिनके शरणागत अर्जुन हुए हैं। तो अर्जुन शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कि चैत्य गुरु का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा की भूमिका भगवान देखिए किस प्रकार से निभा रहे हैं। अर्जुन का सौभाग्य देखिए कि वही कृष्ण अर्जुन के हृदय में भी हैं और अर्जुन के सामने भी, वही गुरु। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक है चैत्य गुरु और एक है बाह्य गुरु। चैत्य गुरु का अर्थ है जो परमात्मा हमारे हृदय में है, आत्मा के बगल में। तो जब कोई आत्मा भगवान को शरणागत होने की इच्छा भी व्यक्त करता है तो चैत्य गुरु बाहर से किसी गुरु को भेजते हैं उसके जीवन में आने के लिए, वो कृपा देने के लिए। तो वो जो बाह्य गुरु हैं वो चैत्य गुरु के प्रतिनिधि हैं। उन्हें कौन भेजना है? चैत्य गुरु अंदर के, परमात्मा भेज रहे हैं। तो अब यहां पर अर्जुन के हृदय में जो चैत्य गुरु हैं, जो परमात्मा हैं, वो तो कार्यरत हैं ही, और उनके सामने कौन है? भगवान, जो कि परमात्मा के बाप, परमात्मा सारे गुरुओं के बाप यदि हम उस प्रकार से समझें, और परमात्मा के बाप कौन है? भगवान कृष्ण, वो वहां पर खड़े हैं सामने। तो कॉम्बिनेशन देखो अर्जुन के साथ में, अंदर परमात्मा बाहर भगवान। क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन शरणागत हुए हैं शिष्य के रूप में। तो वही भगवान परमात्मा का भी रोल निभा रहे हैं, परमात्मा की भी भूमिका निभा रहे हैं। परमात्मा की भूमिका क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हो, तो इसलिए भगवान अभी केवल अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तुम यहां से शुरुआत करो, मुझे जानना कि मैं परमात्मा स्वरूप में सब कुछ जानता हूं, अर्जुन तुम क्या थे, अब क्या हो और आगे क्या होगे, और ये सारे जितने हैं। तो इस श्लोक से ये शिक्षा हम प्राप्त करते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है उसका लक्षण क्या है। बहुत मुख्य लक्षण ये है, क्या? भूत, वर्तमान और भविष्य को जानना। चौथी शिक्षा भगवान इस श्लोक से ये दे रहे हैं कि हालांकि ये सारे नित्य हैं, कौन? अर्जुन तुम, ये सारे योद्धा मैं, हम सब नित्य हैं, परंतु भौतिक शरीर लेने के कारण हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के साथ थे या किसी भक्त के साथ थे, हम भूल जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी में आप देखो तिनखे, तैरते हुए तिनखे मिलते हैं, कब मिलते हैं? लहरों के वजह से, नदी की जो लहरें हैं लहरों के वजह से कभी आप देखो दो तिनखे एक साथ आते हैं, कितने समय के लिए? जब तक कि दूसरी लहर उन दोनों तिनखों को अलग न कर दे। तो एक लहर ने दोनों तिनखों को साथ में लाया और दूसरी लहर अगले क्षण उन तिनखों को अलग कर देती। तो ये उदाहरण वो देते हैं कि हम जब रिश्ते नाते स्थापित करते हैं इस भौतिक संसार में तो वो तिनखों के समान है। समय की एक लहर माता पिता को साथ में लाती है, बच्चों को माता पिता को साथ में लाती है, एक लहर कितना समय? जब तक दूसरी लहर नहीं आती। दूसरी लहर आते ही फिर से वो तिनके अलग दूसरे तिनखों के साथ जुड़ते, दूसरे तिनखों के साथ जुड़ने के बाद अब वो भूल जाते हैं कि मैं इस तिनखे के साथ पिछले क्षण था, तो अब इस तिनखे के साथ जुड़ गया, कब तक? अगली लहर आने तक। अगली लहर कितने समय में आ जाती है? तुरंत। तो यह उदाहरण दिया है कि हम इस जीवन में जो 50, 60, 70, 80, 100 साल भी किसी के साथ रहते हैं, वो जो नित्य काल है उसकी तुलना में एक लहर के आने जाने के समान है। और फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम किसके बेटे थे, किसके बाप थे, किसके पति थे, किसकी पत्नी थी, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर से छोटा बच्चा पैदा होता है रोते हुए, फिर उसे लगता है हाँ यही मेरे माता पिता। चित्रकेतु महाराज की कथा में जो उनको वो बेटा मिला हर्ष शोक, और वो शोक करते हुए बेटे से पूछते कि तुम छोड़ के क्यों गए, अपने माता पिता को छोड़ के गए, तो उसका प्रश्न क्या था? कौन से आप, कौन से वाले हैं? ये प्रश्न था, कौन से वाले हैं आप? तो यहां पर भगवान नहीं भूले, परंतु भगवान कहते हैं अर्जुन तुम भूल गए, और ये सब भूले हुए खड़े हैं यहां पर। इससे ये भगवान बता रहे हैं कि तुम ये जो इतना संबंध के विषय में बोल रहे हो, ये इतना अनित्य है जैसे कि तिनखों का आना जाना, हर एक क्षण में मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना। तो यदि तुम इन्हें मारोगे भी नहीं तो भी ये भूलने वाले तुमको, तुम इन्हें जीवित भी छोड़ोगे तब भी ये तुमको भूल जाने वाले हैं, तुम भी भूल जाने वाले हो, केवल मैं याद रखूंगा कि तुम कितना विलाप किए थे, किसके लिए? जो तुम्हें कभी याद नहीं रखने वाले, आगे भी नहीं रखने वाले। तो अनित्य संबंध भगवान उसकी शिक्षा दे रहे हैं। पांचवी शिक्षा अब भगवान यहां पर बता रहे हैं कि समय का प्रभाव क्या है। समय का प्रभाव किस प्रकार से कार्य करता है? यदि समय को विभाजित करें तो समय विभाजित होता है भूत, वर्तमान और भविष्य में। इन तीन श्रेणियों में समय विभाजित होता है। आप देखो भाषा में भी हम बोलते हैं ना, मैं वहां गया था, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा, हो गया। तो मेरे समय का तीन विभाजित यहां पर मैं उसका भाग देख रहा। तो यहां पर भगवान ने भी अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा यह बता दिया कि अर्जुन तुम मत समझो कि तुम युद्ध जीतोगे या तुम युद्ध हारोगे या वो युद्ध जीतेंगे या वो युद्ध हारेंगे। ये जो समय है ना, ये जीतता है हर समय। तो यहां पर समय के तीन विभाजन कर भगवान बता रहे हैं कि समय के वजह से हम भूतकाल में कुछ थे, वर्तमान में कुछ हैं, भविष्य में कुछ और होंगे। क्योंकि अर्जुन अपने प्रस्तावों के द्वारा ये दर्शा रहे थे कि मैं कुछ किसी स्थिति को एक निश्चित रूप दूंगा, नहीं मार के। अर्जुन वॉज थिंकिंग दैट आई विल मेक समथिंग स्टेबलाइज्ड। भगवान कहते हैं ये समय जो है ना, ये बिल्कुल भी स्थिरता नहीं रखेगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि ये तीन जो श्रेणियां हैं इसके वजह से। तो अब यदि हम शरीर और आत्मा के विषय में चर्चा करें, भूत वर्तमान भविष्य, तो खैर शरीर के विषय में तो कोई विवाद नहीं रहेगा कि हमारा शरीर भूतकाल में इस प्रकार का था, वर्तमान में अब है, भविष्य में क्या होगा, है ना। दूसरों के उस प्रकार के शरीर को देख के समझ में आ जाता है कि मेरा भी भविष्य काल में शरीर किस प्रकार का होने वाला है। आत्मा, क्या आत्मा का भूत वर्तमान भविष्य है, हां या ना? शरीर का भूत वर्तमान भविष्य है कि नहीं? सबसे पहले नहीं, शरीर का है कि नहीं? सबसे पहले आत्मा का नहीं है, मतलब भूत में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं। है आत्मा का भूत वर्तमान भविष्य भी है। कब? जब आत्मा शरीर से अपना संबंध जुड़ाए रखता है। जितना वो अपने शरीर से अपना संबंध स्थापित रखेगा, उतना वो आत्मा अपने आप को भूत वर्तमान और भविष्य में पाएगा। तो यहां पर अर्जुन दुख में क्यों है, अर्जुन इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन का शरीर विलाप कर रहा है, अर्जुन का आत्मा विलाप कर रहा है। क्योंकि वो आत्मा इतना शरीर में रचा पचा है और वो शरीर इनके शरीर में रचा पचा, किनके? भीष्म, द्रोण इत्यादि। तो उसके वजह से फिर वो आत्मा भी सोच रहा है कि मैं भविष्य में पछताऊंगा, इनको मारूंगा। जबकि वो जानता नहीं कि उसके आत्मा भी को भी तुम नहीं मार सकते, तुम खुद के आत्मा को भी कुछ नहीं कर सकते, दोनों की आत्माएं नित्य हैं। तो इससे हम इस श्लोक से ये शिक्षा लेते हैं कि भगवान ये बता रहे हैं कि भूत वर्तमान भविष्य असर करेगा तुम्हारे आत्मा के ऊपर भी, जब तक कि तुम देहात्म बुद्धि में होगे। थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है क्या आज? समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी ब्रह्म ज्ञान शुरू किया भगवान ने, तो वो ब्रह्म ज्ञान अभी आगे चलकर तो और भी भगवान अलग अलग तरीके से आत्मा और शरीर का क्या विभाजन है, और ये बेसिक भगवद गीता एलिमेंट्री दूसरा अध्याय है। तो जब तक ये क्लियर नहीं, ये फंडे क्लियर नहीं होंगे हमारे, ये फंडे क्लियर नहीं होंगे, तब तक यमराज के दंडे पड़ते रहेंगे। अब हम कुछ उदाहरण भागवत और शास्त्रों से लेंगे जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य का उल्लेख किया गया। भरत महाराज का उदाहरण भागवत में है। जिसमें भरत महाराज के शरीर के बारे में कहा गया है कि पूर्व काल में उनका शरीर क्या था, वर्तमान में उनका क्या, फिर भविष्य में क्या। जैसे कि भरत महाराज वो हिरण बने और फिर जड़ भरत, तो एक ही आत्मा उनका शरीर देखो बदलते हुए दिखाया है भरत महाराज का। क्यों शरीर क्यों बदला? क्योंकि उनके मन ने इस प्रकार से स्मरण किया हिरण का मरते समय। तो हालांकि ये उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं कि हालांकि शरीर बदल गया, शरीर को कहा जाएगा कि हिरण को यदि पूछा जाए कि तुम भूतकाल में क्या थे, भरत महाराज, भविष्य में आगे वो हिरण क्या बना, जड़ भरत, परंतु आत्मा वही, आत्मा वही। इसलिए भगवान की कृपा भरत महाराज के ऊपर ये थी कि जितने भी वो भूत वर्तमान भविष्य ये इनका विभाजन था शारीरिक रूप से, परंतु उनकी चेतना वो नित्य रही। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि भगवान की कृपा यदि हो तो चाहे हमारा शरीर भूतकाल में वर्तमान काल में भविष्य काल में कुछ भी कैसा भी रहे, हमारी चेतना बनी रहेगी यदि उनकी कृपा हमारे ऊपर है तो। अगला उदाहरण श्रीमद् भागवत का अजामिल का यदि हम लें, अजामिल भूतकाल में एक ब्राह्मण, वर्तमान में एक पापी, भविष्य में फिर भगवान का भक्त और फिर भगवत धाम। तो अजामिल के भी जीवन में हम देखें तो भूत वर्तमान भविष्य श्रीमद् भागवत में उसका बताया गया है कि कैसे वो पतित अवस्था से कैसे उद्धार उसका हुआ। नारद मुनि, इनका भी उदाहरण बताया गया है। नारद मुनि वो पहले एक गंधर्व थे, उपभर्ण, उपभर्ण नामक नारद मुनि एक गंधर्व थे और वो स्वर्ग लोक में बहुत सी स्त्रियों के साथ विहार किया करते थे और हर समय जो वहां की फिल्मों के गाने वो गाया करते थे। ये बताया गया है, ही वुड सिंग, गाने में बहुत माहिर। तो उनको क्योंकि गाने में इतने अच्छे, तो उनको सारे देवताओं ने बुलाया भगवान के कीर्तन में। तो कीर्तन में भगवान का कीर्तन छोड़कर वो ये सब गाना शुरू कर दिए। तब उनको श्राप मिला और उसके पश्चात वो पृथ्वी पे जन्म लिए और फिर वो भक्तों का संग उनको हुआ और धीरे धीरे फिर वो नारद मुनि का पद उन्हें मिला। तो नारद मुनि के विषय में उनका भूत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य बताया गया। तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे शारीरिक रूप से इतना सब बदलाव हुआ, परंतु वो व्यक्ति जो आत्मा है, वो आत्मा की यात्रा यदि देखो तो वो आत्मा की यात्रा पतित अवस्था से उद्धार अवस्था की यात्रा। ध्रुव महाराज 5 वर्षीय बालक गुस्सा हो गए, उनकी सौतेली मां सुरुचि ने व्यवहार ठीक नहीं किया, दुर्व्यवहार किया, उसकी वजह से वो क्रोधित हुए और फिर नारद मुनि से मिले। नारद मुनि ने उन्हें कहा कि इस प्रकार से तुम तपस्या करो। तपस्या करने के पश्चात ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिला। तो अब ध्रुव महाराज की जीवन से यह समझ में आ रहा है कि एक ही जीवन में ध्रुव महाराज के शरीर में परिवर्तन हुआ और उनकी आंतरिक चेतना में भी परिवर्तन हुआ, परंतु कहां से कहां की ओर, प्रोग्रेसिवली भगवान की ओर। तो ध्रुव महाराज के इससे भी क्या समझ में आता है कि हमारे जीवन में भी भूत वर्तमान भविष्य को यदि हम सामने रखें तो इन सब उदाहरणों से, ध्रुव महाराज, जामिल, इन सब उदाहरणों से हम क्या समझे, क्या सीखे और भगवान भी क्या समझा रहे हैं कि हमें यह देखना है कि मेरी जो आंतरिक चेतना जो नित्य है वो भविष्य में क्या भगवान के चरण कमलों की तरफ अग्रसर हो रही है या नहीं। तो महाभारत में अब भगवान जो बोल रहे हैं कि ये सारे जो जन आधिप, ये सारे जो बड़े बड़े राजा खड़े हैं यहां पर युद्ध करने के लिए, इन सबको मैं देखा हूं ये भूतकाल में क्या क्या थे, मैं सब जानता हूं ये कहां से आए हैं और आगे कहां जाने वाले हैं। तो महाभारत में वर्णन है कि दुर्योधन वो मूर्तिमान कलयुग, भविष्य काल में मूर्तिमान कलयुग कौन है, मूर्तिमान कली दुर्योधन। शकुनी के विषय में बताया गया है कि मूर्तिमान द्वापर युग। दुशासन के विषय में महाभारत में बताया है आदि, आदि करते बाकी सारे भाई, दुशासन और बाकी सारे भाई उनके सारे राक्षस गण। भीमसेन, इनके विषय में बताया गया है कि जो उन 49 मरुदगण, उनमें से एक मरुदगण भीमसेन। नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, इन सब के विषय में महाभारत में बताया कि ये सब कौन थे या किन किन्हीं के विषय में बताया कि वो भविष्य में क्या होंगे। नकुल, सहदेव, अश्विनी कुमार, अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र, द्रोणाचार्य स्वयं बृहस्पति, भीष्मदेव वो 8 वसुओं में से एक वसु। तो महाभारत में ये सब वर्णन इसलिए दिया गया है कि भगवान जो बोल रहे हैं कि मैं सबको जानता हूं इनके भूत के विषय में और इनके भविष्य के विषय में, तो भगवान ऐसे ही कुछ बोल नहीं दिए मन में आया, जो कुछ वो सब डॉक्यूमेंटेड है जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन कौन? अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद, जहां पर भी भगवान को गीता सुनानी होती है अर्जुन आ जाते। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संबंध क्या है? नर और नारायण, जो बद्रीनाथ में नर और नारायण, तो वो नित्य पार्षद नर और नारायण वो हैं अर्जुन और कृष्ण। तो अब अंत में यदि ये पूछा जाए कि भविष्य की गति क्या होगी, यदि ये पूछा जाए, तो अर्जुन चिंता कर रहे हैं ना उनके भविष्य के विषय में, और किसके भविष्य के विषय में? योद्धाओं के भविष्य के विषय। तो महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन युद्ध करने के वजह से भगवत धाम प्राप्त हुए, भगवत धाम को वो प्राप्त हुए युद्ध करने के वजह से। और ये वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से मिलने गए तो अर्जुन भगवान के बगल में बैठे आध्यात्मिक संसार में भगवान के साथ भोजन प्रसाद ले रहे थे। ये अर्जुन के भविष्य की गति। और बाकी सारे योद्धा, अन्य योद्धा, इनके विषय में महाभारत ने बताया है कि युद्ध के पश्चात सभी स्त्रियां विलाप कर रही थी क्योंकि उनके सारे पति मर गए। सुभद्रा वो विलाप कर रही थी, द्रौपदी विलाप कर रही थी, ये सब विलाप कर रहे थे कि किनके पुत्र मारे गए, किनके पति मारे गए, तो ये सब विलाप कर रहे थे। पूरा कितने 64 करोड़ योद्धा मारे गए, तो सोचिए वहां पर कितना रुदन हो रहा होगा। तो व्यासदेव वो पहुंचे यहां पर, सब मरे हुए व्यास वहां पर पहुंचे, व्यासदेव, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के तो 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो सोचिए धृतराष्ट्र कितना विलाप धृतराष्ट्र कर रहा हो। तो व्यासदेव जी उन्होंने सबको सांत्वना दी कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग सब मरे हो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तो व्यासदेव जी ने अपने दिव्य चमत्कारी सिद्धियों से इन सब जो मरे हुए अभी राजा योद्धा थे इनको गंगा में डाला और ये जीवित बाहर आए, सारे जीवित बाहर आए, जितने सारे मरे थे सारे जीवित बाहर आए। और फिर जितने वो विलाप कर रहे थे उन सबको कहा कि आज की पूरी रात जो है वो आप अपने परिवार वालों के साथ बिता सकते हो। फिर से सब लोग आ गए और फिर अब युद्ध नहीं, अब पार्टी थी केवल केवल एक रात के लिए। फिर उसके बाद में व्यासदेव जी ने सभी जो उनकी रानियां थी, राजाओं की जो रानियां थी, उनसे कहा कि यदि आपको आपके पति के साथ जाना है जहां पर वो पहुंचे हैं, तो आपको अब गंगा में प्रवेश करना होगा। ये एक परीक्षा थी। विलाप करना ठीक है मरने के बाद, लेकिन अब ये कह दिया जाए कि यदि आपको उसी पति के साथ फिर रहना है तो आप गंगा में प्रवेश कीजिए, और वही पति आजकल तो इसी जीवन में नहीं चाहिए, वो अगले जीवन में कौन रहेगा इसके साथ, इसी जीवन में परेशान करके रख दिया है। तो वो सभी जो रानियां थी, क्यों क्यों वो गंगा में प्रवेश की, क्योंकि वो सब जानती थी, ये नहीं कि मेरे पति इसलिए सात जन्मों तक इनके साथ रहना है, ये सब कुछ वो नहीं, वो सब जानती थी कि ये सारे जो मेरे हमारे पति मरे हैं ये सब भगवत धाम प्राप्त किए हैं, तो हम भी यदि प्रवेश करेंगे तो कहां जाएंगे, भगवत धाम। तो ये इन सब योद्धाओं की भविष्य की गति व्यासदेव जी ने दिखाई। तो ये जो भगवान सब कुछ जान रहे हैं, तो भगवान हंसेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं अर्जुन को, तो क्या और क्या करेंगे। सोचिए व्यासदेव जी, उन्होंने तो धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि दी कि देख लो तुम्हारे सौ पुत्र जिंदा हैं, धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी, जिस धृतराष्ट्र ने कभी बचपन से अंधा, वो पैदाइशी अंधा, वो धृतराष्ट्र जिसने कभी अपने पुत्रों को देखा भी नहीं, मरने के बाद देखा, जीवित तो कभी देख नहीं पाया, उनके मरने के बाद धृतराष्ट्र देख सका। तो ये सब प्रसंग इसलिए महाभारत में और भागवत में बताए गए हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये एक जो श्लोक है, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम ने मे जनादिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अथ परम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम किसके लिए विलाप कर रहे, अरे ये लोग सब यहां पर आए हैं, मैं इनका उद्धार करने के लिए इनको बुलाया हूं, और तुम इनको नर्क भेजना चाहते हो, इनको नहीं मार के, इनको मारोगे तो ये मेरे धाम को प्राप्त होंगे। तो ये भगवान ने आज के इस श्लोक से पांच शिक्षाएं, भगवद गीता की ये बुनियाद है ये श्लोक, जीव एवं भगवान में अंतर किस तरीके से, भगवान की स्मरण शक्ति जो कोई उसका मैच नहीं, भगवान की स्मरण शक्ति के सामने किसी का, परमात्मा और चैत्य गुरु का स्वरूप, अनित्य संबंध, और समय की व्याख्या करते हुए भगवान बता रहे हैं। अब आगे चलकर अगले श्लोक से भगवान बताएंगे कि आत्मा, आत्मज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान है आत्मज्ञान, कि ये आत्मा का स्वरूप क्या है, उसे पूरा उसका विश्लेषण कर विच्छेदित कर अब विस्तार से भगवान आगे सुनाने वाले। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? एक